स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 13 जुलाई और दिन शनिवार। यूपी के उन्नाव में मदरसा छात्रों की कथित पिटाई के बाद सांप्रदायिक तनाव।
चार लड़के आए बड़े बड़े और उन्होंने कहा कि जय सियाराम के नारे लगाओ, एक झापड़ मारे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, ये नारा हमारे यहाँ मना है। इन्हीं के दो बैट छीने और जो स्टम लगाते हैं और मारना शुरू किया, कहा बोलो जय सियाराम।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा कि वो गर्व लेकिन निराशा के साथ अपनी कुर्सी छोड़ रही हैं।
आई थिंक इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ प्राइड एट हैविंग डन द जॉब बट आल्सो अ डिग्री ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज़ देयर वाज मोर दैट आई वांटेड टू डू।
नडाल को हराकर विंबलडन के फाइनल में पहुंचे रॉजर फेडरर। और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा है कि आने वाले 12 दिनों में वो अपना आधिकारिक आवास छोड़ देंगी। टेरिजा मे ने कहा कि गर्व और निराशा के मिले जुले भाव के साथ वो आने वाले 12 दिनों में यहाँ से चली जाएंगी। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि ब्रेग्जिट के मसले पर कुछ सांसदों के विचारों को उन्होंने कमतर आंक लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ब्रेग्जिट के मामले पर कुछ सांसद किसी भी तरह के समझौते के लिए कतई तैयार नहीं थे।
What I had underestimated was that there were people who were in entrenched positions. So on the one hand, some people who
मैंने कुछ सांसदों के मतों को कमतर आंका। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा ब्रेग्जिट के लिए होने वाले प्रचार में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने इस डील के लिए वोट नहीं दिया क्योंकि ब्रेग्जिट को लेकर उनका एक खास दृष्टिकोण था और वो अपने मत से जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना किसी सौदे के अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन सौदे के लिए वोट करने को तैयार नहीं थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में ब्रिटेन के राजदूत सर किम डैरोक के इस्तीफे पर एक बार फिर अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश राजनीति पर टिप्पणी करने के मामले में उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी।
I wish the British ambassador well. Some people just told me, too bad, but they said he actually said very
मैं ब्रिटिश राजदूत को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि वो मेरे बारे में खराब बातें बोल रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने आकर मुझे ये भी कहा कि दरअसल वो मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहे थे। मैं ब्रिटिश राजदूत की बेहतरी की कामना करता हूं, लेकिन उन्हें अपने से जुड़ी जानकारियों को लेकर और सजग होने की ज़रूरत है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ईरान और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक गतिरोध जारी है। बीते दिन ब्रिटेन ने ईरान पर उसके व्यापारिक जहाज को परेशान करने का आरोप लगाया था, हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। प्रोफेसर माइकल क्लार्क रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक हैं। ईरान और ब्रिटेन के बीच जारी कूटनीतिक गतिरोध पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और संभव है कि उसके ये प्रयास आगे भी जारी रहें।
The Iranians can certainly make life difficult for everybody, but the fact is that there is a united international response to this.
ईरान हर किसी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे वैश्विक प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आगे भी व्यापारिक जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ होगी। यकीन कीजिए, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। अगर वो ऐसा करेंगे तो कोई भी देश उनका दोस्त नहीं रहेगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के व्यापार आयोग ने फेसबुक पर $5 अरब जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल के कारण फेसबुक पर यह जुर्माना लगाया गया है। व्यापार आयोग के रिपब्लिकन सदस्यों ने जुर्माना लगाए जाने का समर्थन किया है, जबकि डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया है। व्यापार आयोग और फेसबुक ने हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलुसी आर्का ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से कहा है कि रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली को हासिल करना उनकी मजबूरी है, लेकिन इससे तुर्की के सामरिक और रणनीतिक झुकाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका पहले ही तुर्की को चेतावनी दे चुका है कि उसे आने वाले समय में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि वो उसे F-35 लड़ाकू विमान देने से मना भी कर सकता है। सोमालिया के दक्षिणी बंदरगाह किस्मायो में एक होटल के पास हुए कार बम धमाके में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जुलाई की 13 तारीख और दिन है शनिवार और इस वक्त भारत में बज रहे हैं 6:34:50। कार्यक्रम की शुरुआत यूपी के शहर उन्नाव से। उन्नाव में जय श्री राम नहीं बोलने पर मदरसा के छात्रों की कथित पिटाई के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। हालांकि हिंदूवादी संगठन इस तरह के आरोप को खारिज कर रहे हैं। प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए पीएसी की तैनाती कर दी है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
मदरसा छात्रों की कथित पिटाई, मुस्लिम समुदाय के लोगों की कथित धमकी और फिर हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को पूरा उन्नाव शहर छावनी में तब्दील रहा। हिंदू संगठनों के लोगों ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी रघुवंश का कहना था,
वीडियो वायरल किया गया है जामा मस्जिद के यहाँ बना करके कुछ लड़कों द्वारा कि हमको जीआईसी ग्राउंड में मारा पीटा गया और हमसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए, जो पूर्णतया संदेहास्पद है, जिसमें पीछे सुनाई दे रहा है कि उसमें उसको सिखाया जा रहा है कि जो बताया गया वो आप बोले। किसी एक हल्की फुल्की मारपीट की घटना को धर्म से जोड़ करके सांप्रदायिक माहौल खराब करने का, उन्नाव जनपद के सांप्रदायिक माहौल खराब करने का कुछ शरारती तत्वों का जाल है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उतरे हैं कि जिन हिंदू युवकों को पकड़ा गया है, जिनको निर्दोष है, जिनको झूठी तरीके से फंसाया जा रहा है, उनको तत्काल रिहाई की जाए, शरारती तत्वों के खिलाफ जाँच की जाए।
दरअसल गुरुवार को उन्नाव के जीआईसी मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहे मदरसा दारुल उलूम के छात्रों और कुछ युवकों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि मदरसा छात्रों की कथित पिटाई के बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई। हिंदू संगठन पिटाई और झड़प की बातों को बेबुनियाद बता रहे थे तो मदरसे के लोग पीड़ित छात्रों के बयान के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा रहे थे। मदरसा संचालक नईम का कहना था कि इन छात्रों से कुछ लोगों ने जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को कहा और ऐसा न करने पर बैट से पीटा गया।
10-12 बच्चे छोटे छोटे, किसी की 12 साल 13 साल 14 साल उम्र है, जीआईसी ग्राउंड रेलवे के पास क्रिकेट खेल रहे थे। 4 लड़के आए बड़े बड़े और उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, झापड़ मारे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बोलेंगे, ये नारा हमारे यहाँ मना है। इन्हीं के 2 बैट छीने और जो स्टंप लगाते हैं और मारना शुरू किया, कहा बोलो जय श्री राम, इन्होंने कहा नहीं बोलेंगे और मारना शुरू किया, भागे तो फिर उन्होंने जानलेवा हमला किया और पत्थर मारे। तकरीबन हर लड़के का कुर्ता फाड़ा और जिसकी जेब में जो मिला सब ऐसे छीने।
वहीं पुलिस ने मदरसा संचालक नईम की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्नाव के सीओसीटी उमेश चंद्र त्यागी का कहना था,
ये जो मदरसा है यहाँ पर दारुल उलूम, उसमें बच्चों की बृहस्पतिवार को हाफ डे हो जाता है, तो सामान्यतः हाफ डे वाले दिन मदरसे के बच्चे जीआईसी इंटर कॉलेज में क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान किसी प्रकार से इन बच्चों के साथ एक झगड़ा हुआ है, जिसमें इनके द्वारा दी गई जो तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की गई है।
लेकिन शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में जुटकर थाने का घेराव कर दिया, जिससे शहर में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस के साथ ही पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित छात्रों का मेडिकल परीक्षण कराया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा है कि वो गर्व के साथ साथ निराशा के साथ अपना पद छोड़ रही हैं। टेरिजा मे अगले 12 दिनों में प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगी और अपने आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट को भी छोड़ देंगी। बीबीसी न्यूज़ की राजनीतिक संपादक लारा क्यून्सबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। ब्रेग्जिट के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि कुछ सांसद अपने विचारों को लेकर कितना अडिग हैं और उस पर किसी भी तरह के समझौते के लिए वो तैयार नहीं थे। टेरिजा मे ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर उन्हें गर्व भी है और इसके साथ साथ निराशा भी।
I think it'll be a mixture of pride at having done the job, but also
मुझे लगता है कि ये मेरे लिए गर्व की बात है जो मैंने इस पद पर रहते हुए किया, लेकिन कुछ हद तक निराशा भी है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। मैंने पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन आप जब भी पद छोड़ते हैं हर किसी को लगता है कि वो और बहुत कुछ करना चाहता था। उन्होंने कहा कि राजनीति में और महिलाओं को आना चाहिए।
The first thing I hope will is that people will recognize the second female prime minister and I actually hope in years to come
मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि लोग मुझे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में और महिलाएं प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन राजनीति को महिलाओं के लिए और बेहतर जगह बनाने की जरूरत है। कई महिला राजनेता अभी भी हैं जो राजनीति में बहुत परेशानी का शिकार होती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके संबंधों के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उनका कहना था,
The relationship with the United States isn't about two people. It's about two countries that have stood shoulder to shoulder.
अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध दो नेताओं का नहीं बल्कि दो देशों का है। पिछले 100 वर्षों में ब्रिटेन और अमेरिका ने इतिहास के कई अहम मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया है और ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रेग्जिट के अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और बेआवाजों को आवाज देने का काम किया है।
बीबीसी इंडिया बोल।
दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम भारत, जो मानी जा रही थी इस बार क्रिकेट विश्व कप की दावेदार, ग्रुप स्टेज में शीर्ष पर रहने के बावजूद सेमीफाइनल में हार कर टूर्नामेंट से हुई बाहर। कहां हुई गलती, कौन है जिम्मेदार, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 13 जुलाई शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त कॉल करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चला है और भूमिका अखबारों के साथ मौजूद है स्टूडियो में। जी बताएं भूमिका।
जी इकबाल, सबसे बड़ी खबर के तौर पे अगर कहें तो ये है कि लद्दाख में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। डोकलाम जो गतिरोध है उसके 2 साल बाद चीन की सेना ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। हालांकि भारतीय सेना के जवानों के एतराज और उनके समझाने बुझाने के बाद जो चीनी सैनिक थे वो वापस चले गए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में गरीबी से करीब 27 करोड़ लोग जो हैं वो उभरे हैं गरीबी से। इसके अलावा आपको बताएं कर्नाटक में जो राजनीतिक हलचल और राजनीतिक उथापो जो मची हुई है वो अभी है ही, लेकिन कुमार स्वामी ने दावा किया है कि वो बहुमत साबित कर लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका डाली है और उस 6 महीने में बच्चों के साथ दुष्कर्म के 24,000 मामले आए हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए एक याचिका डाली है। इसके अलावा एक थोड़ी मज़ेदार या इसे कहें कि इन राजनीतिक खबरों से इतर एक खबर है कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारने के बाद यूं तो भारतीय क्रिकेट टीम को वतन वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो जो टीम है वो अभी भी मैनचेस्टर में बनी हुई है।
तो अब शायद वो कल फाइनल देख के आएंगे।
बिल्कुल, वो शायद फाइनल देख करके आएंगे और शायद आते ही उनसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि आप फाइनल के दावेदार थे, आप कैसे सेमीफाइनल में हो गए। इसके अलावा राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लगभग 10 दिन होने वाले हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते CWC की एक मीटिंग होगी जिसमें अध्यक्ष को चुन लिया जाए। इसके अलावा ऋषिकेश का जो 90 साल पुराना लक्ष्मण झूला है उसे बंद कर दिया गया है। PWD ने कहा है कि क्योंकि ये झूला 90 साल का पुराना हो चुका है और काफी कमजोर हो चुका है,
लोगों की जान को खतरा है।
हाँ। जी, तो लोगों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए इस झूले को बंद कर दिया गया है और मेट्रो के फेज 4 का जो काम था, जो रुका हुआ था, वो अब शुरू हो सकता है। जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात विवेचना की। 20 वर्ष पहले करगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। इस लड़ाई में भारत के 527 जवान मारे गए थे। कारगिल युद्ध की 20वीं बरसी पर हम एक विशेष श्रृंखला شروع کر رہے ہیں۔ پہلی کڑی میں ریحان فضل نظر ڈال رہے ہیں کارگل یدھ کے پورے گھٹنا کرم پر۔
8 مئی 1999، 6 ناردرن لائٹ انفینٹری کے کیپٹن افتخار اور لانس حوالدار عبد الحکیم 12 پاکستانی سینکوں کے ساتھ کارگل کی اعظم چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھارتیہ چرواہے اپنے مویشیوں کو چرا رہے تھے۔ پاکستانی سینکوں نے آپس میں صلاح کی کہ کیا ان چرواہوں کو بندی بنا لیا جائے، لیکن انہیں جانے دیا گیا۔ قریب 1.5 گھنٹے بعد یہ چرواہے بھارتیہ سینا کے 6-7 جوانوں کے ساتھ لوٹے۔ انہوں نے اپنی دوربینوں سے علاقے کا معائنہ کیا اور واپس چلے گئے۔ قریب 2 بجے وہاں ایک لاما ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا آیا۔ اتنا نیچے کہ کیپٹن افتخار کو پائلٹ کا بیج تک صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بھارتیہ سینکوں کو بھنک پڑی کہ بہت سارے پاکستانی سینکوں نے کارگل کی پہاڑیوں کی اونچائیوں پر اپنی پکڑ بنا لی ہے۔ اگلے دن پھر 2 لاما ہیلی کاپٹر وہاں پہنچے اور اعظم، طارق اور تشفین چوکیوں پر گولیاں برسائیں۔ کیپٹن افتخار نے بٹالین مکھیالے سے بھارتی ہیلی کاپٹروں پر گولی چلانے کی انمتی مانگی، لیکن انہیں یہ اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ اس سے بھارتیوں کے لیے سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا۔ ادھر بھارتی سینک ادھیکاریوں کو یہ آبھاس تو ہو گیا کہ پاکستان کی طرف سے بڑی گھسپیٹھ ہوئی ہے۔ شروع میں انہیں لگا کہ وہ اسے اپنے استر پر سلجھا لیں گے، اس لیے انہوں نے راجنیتک نیتتو کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس سمے بھارتی ودیش منتری جسونت سنگھ کے بیٹے مانویندر سنگھ، جو ایک زمانے میں انڈین ایکسپریس کے سنواد داتا ہوا کرتے تھے، یاد کرتے ہیں۔
میرے ایک متر تھے اس سمے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں، موبائل میرے پاس تھا نہیں، نہ ان کے پاس تھا موبائل۔ انہوں نے مجھے لینڈ لائن پر فون کرا، گھر پہ ملنا ہے شام کو، اور میں ان کے گھر پہ گیا۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ کسی بلٹن کو ترنت میں نے ہیلی کاپٹر کے مارفت اسی ڈیفیکلٹ چھیتر میں پورے یونٹ کو بھیجا ہے، کہیں کہیں کانٹیکٹ ہوا ہے انفلٹریشن سے۔ ان کو بھی جانکاری نہیں تھی کہ انفلٹریشن کس کا ہے، آتنکوادیوں کا یا سینا کا۔ رات کو میں لیٹ آیا، اس لیے رات کو تو میں نے فادر کو بتایا نہیں۔ سویرے میں جلدی اٹھا، ان کے وہ بھی جلدی اٹھتے ہی تھے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور آپ پتہ کریے، آپ کو جانکاری زیادہ ملے گی میرے سے۔ پھر انہوں نے سورگیہ جارج فرنانڈیز کو بتایا، پھر آگے جا کر یہ بات ہے۔ اور
فرنانڈیز شاید روس جانے والے تھے، اگلے ہی دن
وہ کہیں جانے والے تھے۔ انہوں نے پھر بریفنگ کے لیے بولا آرمی ہیڈ کوارٹرز میں۔
سوال اٹھتا ہے کہ لاہور شکھر سمیلن کے بعد پاکستانی سینکوں کے اس طرح گپ چپ طریقے سے کارگل کی پہاڑیوں پر جا بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ انڈین ایکسپریس کے سہ سمپادک سشانت سنگھ کہتے ہیں،
مقصد یہی تھا کہ بھارت کی جو ناردرن موسٹ ٹپ ہے، جہاں پر سیاچن گلیشیئر اور باقی جو جگہ ہیں، اس کی جو لائف لائن ہے، وہ جو ایک روڈ ہے NH1D کو کاٹنے کے لیے اور اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، وہ کچھ ایسی پہاڑیوں پر آنا چاہتے تھے جس سے کہ جو رسد کا سامان اور جو لاجسٹک سپلائیز کے لیے جو کانوائز جاتے ہیں، وہ سیاچن کی طرف نہ جا پائیں اور انڈیا کو شاید سیاچن چھوڑنا پڑ جائے۔ اس بات کا شاید مشرف کو بہت برا لگا تھا کہ بھارت نے سیاچن پہ قبضہ کیا تھا 1984 میں، اور اس وقت مشرف جو ان کی پیرا کمانڈو فورس ہے SSG کے میں ایک ینگ میجر تھے، اور انہوں نے کئی بار اس جگہ کو خالی کرانے کی کوشش بھی کی، پر وہ سکسیسفل نہیں ہوئے۔
جب بھارتی نیتتو کو معاملے کی گمبھیرتا کا پتا چلا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بھارتی پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی نے پاکستانی پردھان منتری نواز شریف کو فون ملایا۔ پاکستان کے پورو ودیش منتری خورشید محمود قصوری اپنی آتم کتھا نائیدر اے ہاک نور اے ڈو میں لکھتے ہیں،
واجپئی نے شریف سے شکایت کی کہ آپ نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ایک طرف آپ لاہور میں مجھ سے گلے مل رہے تھے، دوسری طرف آپ کے لوگ کرگل کی پہاڑیوں پر قبضہ کر رہے تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ انہیں اس بات کی بالکل بھی جانکاری نہیں ہے، میں پرویز مشرف سے بات کر آپ کو فون ملاؤں گا۔ تبھی واجپئی نے کہا کہ آپ ایک صاحب سے بات کریں جو اس وقت میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اس وقت ہت پرب رہ گئے جب انہوں نے فون پر دلیپ کمار کی آواز سنی۔ دلیپ کمار نے ان سے کہا، میاں صاحب، ہمیں آپ سے اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ آپ نے ہمیشہ بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی کے سمرتھک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ بڑھتا ہے، بھارتی مسلمان بری طرح سے اسرکشت محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔
سب سے تعجب کی بات تھی کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو اتنے بڑے پاکستانی آپریشن کی ہوا تک نہیں لگی۔ भारत के पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे सतीश चंद्रा बताते हैं।
RAW did not detect it. पर जो सवाल खड़ा होता है, could they have detected it? इन्होंने कोई फोर्स एडिशनल नहीं ली वहाँ। रॉ की डिटेक्शन होती है जबकि अगर आप फॉर्मेशंस मूव करोगे, तो उन्होंने तो एक या दो मैक्सिमम एडिशनल बटालियन उस एरिया में डाले। हमने बहुतों से इंटरव्यू की, आईबी से भी बात की हमने, तो आईबी ने कहा कि हमने देखिए 52 इनपुट्स या इतने इनपुट्स, उनने कोई नंबर दिए, ये दिखाता है कि ये किया। वो कैसी चीज़ें थी कि यहाँ पे ऑर्डिनेंस डंप हो रहा था, यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट थी। हमने कहा कि भाई ये तो हर साल होता, जैसे कई लोकेशन पे हेलीकॉप्टर आए, वो हर साल आ रहे। तो जैसे कहते हैं ना, स्मोकिंग गन एविडेंस कहीं नहीं था। हाँ, अगर फॉरवर्ड पोजिशंस पे फौज होती तो उनको नज़र आता और डिटेक्ट होता। जहाँ पे फौजेज आगे थी, और एक अफसर ने तो डिसोबे भी कर दिया ऑर्डर्स, उसने विड्रॉ नहीं किया, वहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई नहीं। फौज जो होती है, इट इज़ नॉट ए चौकीदार फोर्स। फौज जो होती है वो जंग के लिए होती है, जहाँ पे अटैक होता है, इट इज़ नॉट टू डू BSF जॉब।
लेकिन इसके बावजूद इसका जिस तरह से भारतीय सेना ने सामना किया, उसकी कई हलकों में आलोचना हुई। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग कहते हैं,
मैं कहूंगा कि एक स्ट्रेटेजिकली एक ब्रिलियंट प्लान था कि एक खाली इलाके को, बहुत बड़े इलाके को आके उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हमारी जो लाइफलाइन है लद्दाख की, जो रोड जाती है श्रीनगर से जोजिला पास से होकर लेह को और आगे सियाचिन ग्लेशियर तक जो मेंटेन करती है, जो सिर्फ समर्स में खुलती है, उसके ऊपर हावी हो गए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, टैक्टिकली एक बहुत बड़ी सक्सेस थी उनकी इस लेवल को, आगे कब्जा कर लिया। लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्या के एंड में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल बिलो पार थी, और मैं कहूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस शर्मनाक थी पहले 1 महीने। उसके बाद जब 8th Division ने चार्ज लिया और फिर हमें थोड़ा सा उस बात का एहसास हो गया कि इस इलाके में कैसे ऑपरेट करना है, डेफिनेटली ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि एक तो पहाड़ियां जो हैं उनके ऊपर उनका कब्जा, आप नीचे हो वो ऊपर है, ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। जैसे कि आप आदमी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है, आप नीचे से चढ़ के उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी। तीसरी बड़ी बात ये थी कि कुछ हद तक हमारी ट्रेनिंग भी इस मामले में ऑफेंसिव में कमजोर थी।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी बार बार दोहराया कि उनकी नजर में ये एक बहुत अच्छा प्लान था जिसने भारतीय सेना को खासी मुश्किल में डाल दिया था। मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा,
भारत ने उन चौकियों पर पूरी ब्रिगेड से हमले किए जहां हमारे सिर्फ 8 या 9 सैनिक तैनात थे। जून के मध्य तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। पहाड़ हमेशा रक्षण की लड़ाई में मदद करते हैं। भारतीयों ने खुद माना कि उनके 600 से अधिक लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग घायल हुए। हमारी सूचना ये है कि वास्तविक संख्या लगभग इसकी 2 गुनी थी। भारत में असल में हताहतों की बहुत बड़ी संख्या के कारण ताबूतों की कमी पड़ गई थी, और बाद में ताबूतों का एक घोटाला भी सामने आया था।
मुशर्रफ के इस वक्तव्य पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8 या 9 किलोमीटर अंदर घुस आए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान आहत हुए।
एक फौज में सेइंग होती है कि माउंटेन्स ईट्स ट्रूप्स। नॉर्मल जगह पर प्लेन्स में अटैकिंग फोर्स में 3 गुना होनी चाहिए जो डिफेंडिंग फोर्स है उससे, पर माउंटेन्स में उसको तकरीबन 9 गुना, और कारगिल जैसे माउंटेन पे तकरीबन 27 गुना। मतलब अगर एक जवान दुश्मन का कहीं बैठा हुआ है तो आपको उसको हटाने के लिए अपने 27 जवान लगाने पड़ेंगे।
जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सैनिकों को जो मोमेंटम मिला वो जुलाई तक जारी रहा। आखिरकार नवाज शरीफ को युद्ध विराम के लिए अमरीका की शरण में जाना पड़ा। अमरीका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई को क्लिंटन और नवाज शरीफ की बहुत अप्रिय परिस्थितियों में मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मौजूद क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडल ने अपने एक पेपर अमेरिकाज डिप्लोमेसी इन 1999 कारगिल समिट में लिखा,
एक मौका ऐसा आया जब नवाज ने क्लिंटन से कहा कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। क्लिंटन ने कहा कि ये संभव नहीं है, ब्रूस यहाँ पर नोट्स ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बैठक में हमारे बीच जो बातचीत हो रही है उसे लिखा जाए, क्लिंटन ने कहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते तो यहाँ ना आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास वक्तव्य का मसौदा तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाएगा। इसके बाद तो क्लिंटन की नाराजगी बढ़ती गई। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कई बार ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से पकड़वाने में मदद करने के लिए कहा है, लेकिन आपने अब तक कुछ नहीं किया है, बल्कि आपकी आईएसआई तालिबान और लादेन के साथ मिलकर काम कर रही है। नवाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं।
पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य तारिक फातमी ने फ्रॉम कारगिल टू द कूप पुस्तक की लेखिका नसीम जहरा को बताया कि जब शरीफ बैठक से बाहर निकले तो उनका चेहरा निचुड़ चुका था। उनकी बातों से हमें लगा कि उनमें विरोध करने की कोई ताकत बाकी नहीं बची थी। उधर शरीफ क्लिंटन से बात कर रहे थे, टेलीविजन पर टाइगर हिल पर भारत के कब्जे की खबर फ्लैश हो रही थी। ब्रेक के दौरान नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को फोन करके पूछा कि क्या ये खबर सही है। मुशर्रफ ने इसका खंडन नहीं किया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे अगले शुक्रवार को। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्ता। बार हमे आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, लेकिन इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का जलवा भी बरकरार है, जिसमें पुरुष एकल वर्ग का फाइनल तय हो गया है। ये कल शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर के बीच खेला जाएगा। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में नोवाक जोकोविच ने स्पेन के रॉबर्टो बातिस्ता अगुट को और रॉजर फेडरर ने स्पेन के राफेल नडाल को मात दी। इसके साथ ही दो स्पेनिश खिलाड़ियों का इस साल फाइनल खेलने का सपना टूट गया। दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और तीसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल के बीच हुए मुकाबले को देखने के लिए सेंटर कोर्ट दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। फेडरर ने पहला सेट टाई ब्रेकर में 7-6 से जीता। दूसरे सेट में नडाल ने जबरदस्त वापसी की और फेडरर को एक तरफा 6-1 से मात दी, लेकिन फेडरर ने नडाल के सेट जीतने की खुमारी अगले दो सेट और मैच जीतकर उतार दी। फेडरर ने अपनी सर्विस और रिटर्न पर गजब का नियंत्रण दिखाते हुए तीसरा सेट 6-3 और चौथा सेट 6-4 से जीता। उन्होंने ये मैच 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 से जीता। इससे पहले फेडरर ने साल 2017 में विंबलडन का खिताब जीता था। अगले महीने 38 साल के होने जा रहे फेडरर के नाम 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। सेंटर कोर्ट पर ही कल इससे पहले शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी पूरी फॉर्म में थे। उन्होंने 23वीं वरीयता हासिल स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगुट को 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 से हराया। जोकोविच ने पिछले साल भी विंबलडन का खिताब जीता था। वैसे जोकोविच 4 बार विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन आज सबकी नजर रहेगी महिला एकल वर्ग के फाइनल पर, जहां 11वीं वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स और 7वीं वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप आमने सामने होंगी।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि आने वाले 12 दिनों में वो अपना आधिकारिक आवास छोड़ देंगी। ईरान और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक गतिरोध जारी है। बीते दिन ईरान ने ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज को परेशान बीते दिनों ब्रिटेन ने ईरान पर उसके व्यापारिक जहाज को परेशान करने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान इस तरह के आरोपों का खंडन करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमरीका के व्यापार आयोग ने फेसबुक पर $5 अरब जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलुसी आर्का ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से कहा है कि रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली को हासिल करना उनकी मजबूरी है, लेकिन इससे तुर्की के सामरिक और रणनीतिक झुकाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अप्रवासियों के मामलों को देखने वाली एक अधिवक्ता ने अमेरिका की संसदीय समिति से कहा है कि शरणार्थी शिविरों में रह रहे बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब है। सोमालिया के दक्षिणी बंदरगाह किस्मायो में एक होटल के पास हुए कार बम धमाके में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।